भी पाए न हम यादों के आंचल में बाबा बसा लो किरणों की बाहों में हमको समा लो तुमसे तनिक दूर जाए न हम भूले से भी भूल पाए न हम यादों के आंचल में बाबा बसा लो किरणों की बाहों हमको समा लो।
ओम शांति। मुरली रूपी रत्नों से खेलने का जिन्हें सेवा के रूप में सौभाग्य मिला है, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आपका ये सौभाग्य रहा बाल्यकाल से ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो जाने से ईश्वरीय वातावरण में पलने का मौका मिला। लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए और 1971 में मधुबन की धरनी पर पहली बार कदम रखा और 1972 में मधुबन की धरनी पर दूसरी बार कदम रखा और फिर तब से ही मधुबन निवासी बन गए। तो 1972 से आज दिन तक एक बहुत लंबा सफर आपने तय किया है मधुबन के इस हेडक्वार्टर में। आरंभ में जैसे विविध सेवाएं मिलती है, आपने विविध सेवाओं में अपना योगदान दिया और 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के निमित्त बनाया और वो सेवा थी मुरलियों से संबंधित, कि जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में अनुवाद करना और फिर उसे पोस्टिंग के लिए सेवाओं में सहयोग देना। आज दिन तक उस सेवा को अब बखूबी निभा रहे हैं और उसी कारण से पूरा ब्राह्मण परिवार आपको किस नाम से जानता है, मुरली वाले राजू भाई। तो न सिर्फ मुरली वाले राजू भाई हैं, लेकिन इन्हीं मुरलियों के जो रत्न आपके दिलो दिमाग में सदा घूमते रहते हैं, इस आधार से आपने एक टॉक शो भी किया है अमूल्य रतन के नाम से, जिसके 1300 एपिसोड पार कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन्हीं मुरलियों को अपने जीवन का आधार बनाकर देश और विदेश में भट्टियां कराने भ्रमण करते रहते हैं और ब्राह्मणों को लाभान्वित करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, कि जिस प्रभाग के द्वारा एक बहुत सुंदर कंसेप्ट शाश्वत यौगिक खेती का किसानों को मिला है, जिसे बहुत सुंदर रीति से खेती की जा रही है और यही हमारी सतयुगी खेती भी होगी। और इसके साथ साथ हमारे मधुबन के अंदर जो हिंदी टाइपिंग है, स्टेशनरी है, फोटोकॉपी डिपार्टमेंट है आदि आदि आपके निर्देशन में चलता है और साथ साथ दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनको भी आप ही रिस्पॉन्ड करते हैं और मुरली के बाद हम अव्यक्त इशारे पढ़ते हैं पत्र पुष्प में से, वो पत्र पुष्प भी आप ही कंपोज करते हैं। और जैसे अभी दादी आई, दादी का दिन पास में है तो आपको सौगात में क्या मिला, एक पुस्तक मिला दादी के जीवन से संबंधित। तो ऐसी कई प्रकार की छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी आप ही कंपोज करते हैं और पूरा ब्राह्मण परिवार लाभान्वित होता रहता है। तो आज बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में है और वो विषय है जो आम तौर पर सभी का उस पर प्रश्न होता है। योग की अग्नि से विकारों की खाद कैसे निकाले, तो सुनते हैं भ्राता जी के अनुभव से। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। सभी को बाबा की इस तपस्या भूमि में, चरित्र भूमि में योग तपस्या करने का गोल्डन चांस मिला। बॉम्बे की धरनी से दूर शांत एकांत वातावरण में योग के अच्छे अच्छे अनुभव तो किए ही होंगे। योग अग्नि है। जब अग्नि शब्द कहते हैं तो कई प्रकार की ज्वाला सामने आती है, लेकिन योग तो शीतल बनाने वाला है, इसको अग्नि क्यों कहते हैं? अग्नि इसीलिए कहते हैं, जैसे आग के अंदर अगर कोई चीज डाल दी जाए तो उसका रूप रंग उसकी क्वालिटी सब परिवर्तन हो जाती है। आप कच्ची ईंट को पक्का करने के लिए एक भट्टी में डालते हैं, जब वो पक करके तैयार हो जाती है तब वो बिल्डिंग में काम आती है। ऐसे ही हम सभी भी बाबा की याद की लगन की अग्नि में जब पढ़ते हैं, लगन की अग्नि, समझ रहे हैं ना, कहते हैं इसको लगन लग गई। लगन एक ऐसी तीव्र अग्नि है जो रुकने से भी रुकती नहीं। मीरा को भी लगन लगी थी ना, एक की लगन में मगन हो गई। तो ये याद जिसमें हम सब बहुत प्यार से सिर्फ बाबा शब्द ही कहते हैं, कल की मुरली में कितनी बार कहा बाबा कहो सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तो जब हम दिल से पहचान से बाबा को याद करते हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं, संबंध रखते हैं, और जब वो याद एक लगन के रूप में, जैसे कोई ऐसा प्यारा ऐसा स्नेही होता है जो नैनों के सामने वही आता रहता है बार बार, उसकी याद में जैसे हम खोए हुए रहते हैं, काम भी कर रहे हैं बात भी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर कोई व्यक्ति से या वस्तु से प्यार होता है, स्नेह होता है, वहां पर बुद्धि बार बार जाती रहती है। तो हम सबको इस संगम युग पर हमारा प्रियतम अति प्यारे से प्यारा बाबा, जिसने हमें अपना बनाया, इतनी श्रेष्ठ पवित्र जीवन दी, विकारों के कीचड़ से निकाला, जो आज व्यक्ति इंद्रियों के गुलाम है, विकारों के अधीन है, परवश स्थिति में है, ऐसी परवश स्थिति से हमें छुड़ाकर अपना बच्चा बनाया। हम सभी उस बाबा का जब दिल से शुक्रिया करते हैं और बाबा के ही स्नेह में समा जाते हैं, तो प्यार में खुशी में जैसे नयन भी गीले हो जाते हैं। एक बाबा का बच्चा बॉम्बे से ही आया था, थोड़े दिन पहले मैं उस सेंटर पर गया था, तो मेरी गाड़ी चलाते हुए कहता है, भाई जी एक अनुभव सुनाता हूँ। अनुभव सुनने की इच्छा तो सबकी होती है, तो मैंने कहा सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? तो मेरे कहता है कि रावण में जितने बुराइयां विकार थे ना, उससे भी कई गुना ज्यादा मेरे में थे, मैं रावण का भी बाप था। ऐसे बहुत प्यार से बोला, तो मैं उसकी तरफ देखने लगा, हमने क्या बोलते हो भाई? कहता भाई जी मैं इतना पीता था, इतनी क्रोधी था, इतना अगर मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, और कभी कभी ऐसा पी के निकलता था जो मैं कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ किस नाली में पड़ा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ कुत्ते चाट रहे हैं, मेरी बहुत बुरी हालत थी, लोग डरते थे, मेरा सारा बिजनेस चला गया, मेरा जवाहरात का बिजनेस था, मेरे से घर वाले परिवार वाले सब नफरत करने लगे और बहुत ज़्यादा मेरी मानसिक स्थिति डगमग हो गई। कोई नहीं मेरे को पूछता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही चलते चलते मैंने ब्रह्मा कुमारीज का बोर्ड देखा और बोर्ड देख करके जब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा तो उन बहनों ने इतना स्नेह से कहा, भैया आओ, बहुत प्यार से एक शब्द बोला। तो मैं अंदर जब गया बस मेरा जीवन बदल गया। जाते ही बहनों का स्नेह मिला, बहनों ने प्यार से टोली खिलाई, फिर कहा कोर्स कर लो, ऐसे लगा कोई अपना मिल गया। और बस उस दिन से लेकर के हमारी जीवन में जो परिवर्तन आया, हमारे परिवार वाले समाज वाले सब कहते हैं तो जादू कोई कर दिया इन्होंने, तो बाबा ने सचमुच जादू मेरे पर किया है, और ऐसा कह के वो रोने लगा। इतना प्यार में खो गया, समा गया। तो मैंने कहा वास्तव में यही सच्ची याद है। ये याद और क्या है, जो बाबा ने हम सबको इतना महान बनाया है, इस कलयुग में जीना सिखाया है, तो जब हम बहुत दिल से बाबा शब्द कहते हैं तो बाबा शब्द कोई देहधारी की तरफ नहीं जाता। ब्रह्मा बाबा माध्यम बने हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा में जो बाबा है उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। उस निराकार शिव बाबा ने कैसे इस कलयुगी सृष्टि में इतना बड़ा महान कार्य किया है, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने का, एक पतित को पावन बनाने का, और ऐसी ही मानव आत्माएं जो इतना विकारों के बुराइयों के अधीन थी, बाबा की नजर पड़ी और जीवन में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। अब बाबा को याद करने की मेहनत करना, युद्ध करना, तो कई बार बाबा कहता है दिमाग वाली याद नहीं चाहिए। एक है दिमाग से याद करना और एक है दिल से याद करना। और दिल से याद करने की जो तार है दिल की, वो बाबा तक सहज पहुंचती है। कोई कहीं भी किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा अगर सच्चे दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाबा के पास वो पहुंच जाता है और बाबा उसकी आवाज को सुन लेता है, उसको अनुभव कराता है मैं साथ हूं तेरे। और ऐसा अनुभव जब होने लगता है तो उसकी याद भूलती नहीं है, याद करना नहीं पड़ता है, उसकी याद सताने लगती है, जैसे बस उसके सिवाय और मेरा कौन है संसार में। तो आप सबको ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुभव है तो वो लगन की अग्नि प्रज्वलित होगी, और जो भी ऐसे नेगेटिव संस्कार हैं, जो विकार हैं, बुराइयां हैं, जो खाद आत्मा के अंदर पड़ गई है, वो अपने आप निकलती जाएगी। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, उसके लिए सोचने की जरूरत भी नहीं है। कोई चीज निकालने की मेहनत की जाए, कुछ छोड़ना पड़ता है तो उसमें सोचना भी पड़ता है। बाबा के बच्चे ये नहीं सोचते छोड़ना पड़ेगा, बाबा के बनते हैं और जो ऐसी आदतें हैं वो अपने आप छूट जाती हैं, क्योंकि इतना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रोज बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है, महसूस कराता है, एक लक्ष्य की स्मृति है कि हमें ऐसा बनना है। तो कहते हैं जैसे लक्ष्य, जितना ऊंचा लक्ष्य है उतने ऊंचे लक्षण अपने आप आते हैं, और वो लक्षण अगर आते जाते हैं तो जो आसुरी लक्षण हैं जिनको हम बुराइयां कहें, विकार कहें, विकर्म कहें, वो अपने आप माइनस होते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो खाद निकालने के लिए कोई स्पेशल मेहनत करना, उसका संकल्प करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में खाद निकली है या नहीं निकली है, योग अगर मान लो हम 10, 15, 20 साल से कर रहे हैं, मैं 52 साल से कर रहा हूँ बाबा के घर में रह करके, अगर मेरे वो संस्कार जो पहले थे पिछले जन्म के मर्जीवा जन्म के संस्कार तो बड़े दिव्य पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन जब वो लौकिक जीवन के संस्कार बार बार बाहर इमर्ज हो जाते हैं चलते चलते, तो ऐसे लगता है कि अभी तक मेरे योग से वो मेरे भी कर्म विनाश नहीं हुए। कोई 10 साल 20 साल योग कर रहा है, रोज मुरली सुन रहा है, ब्रह्मा भोजन खा रहा है, अच्छा संग कर रहा है, और फिर भी वो संस्कार उसको परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, बार बार बाहर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? खाद निकली, विकर्म विनाश हुए? नहीं हुए। विकर्म विनाश की सबसे बड़ी निशानी है हम शीतल काया वाले योगी बन जाएंगे। शीतल काया, कोई भी प्रकार की उत्तेजना नहीं रहेगी संस्कारों में। और मूल जो दो विकार हैं जो हर व्यक्ति को सता रहे हैं, काम और क्रोध, हैं तो सभी दुश्मन एक से एक बड़े हैं, लेकिन इसके अधीन हो गई आत्मा, समझती है इस विकार को जीतना संभव ही नहीं है कलयुग में, और उसके कारण आज कितने पाप बढ़ते जा रहे हैं, नरक जो बन रहा है सृष्टि, उसका कारण तो काम विकार ही है। कितनी अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, तो देखा यह जाए कि एक व्यक्ति इतना इंद्रियों के गुलाम हो गया, इतना उसके विकारों का अंश, उसका उत्तेजना ही बढ़ गई है, जो उन उत्तेजनाओं के कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। हम सब राजयोग का अभ्यास करते हैं, रोज बाबा हमें कहता है बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, राजा हो। किसके राजा हो? पहले तो मन बुद्धि पर राज्य चाहिए, ये इंद्रियां और क्या करेंगी, लेकिन मन बुद्धि के बहुत समीप और बहुत स्नेही आज्ञाकारी इंद्रियां हैं। संकल्प उठता है और इंद्रियों के अंदर चंचलता शुरू हो जाती है, इसलिए हमें अपने मन बुद्धि को पहले कंट्रोल में लाना है, और वो तभी हो सकता है जब हम अकाल तख्त पर रहने का अभ्यास करेंगे, चलते फिरते कर्म करते बात करते मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे हैं, जो सोचना चाहूं सोचूं, जो न सोचना चाहूं न सोचूं, जो मेरे काम का नहीं है वो मुझे नहीं सोचना है। संकल्प की शक्ति पर अगर हमने अपना कंट्रोल कर लिया तो कहते हैं मन जीते जगत जीत। पहले बाबा कहते थे बच्चे मन को जीता नहीं जाता, ये तो माया जीते जगत जीत, साकार में यही मूल्यां चली। लेकिन अव्यक्त होने के बाद बाबा ने देखा कि माया जीते तो ठीक है, लेकिन माया भी मन से उत्पन्न हो रही है, इसलिए पहले ही कह दिया मन जीते जगत जीत, मन को जीतना। अब मन को कैसे जीतना? युद्ध करके, मेहनत करके? नहीं, मन तो हमारा है ना, मेरा है। कहते मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चंचल है, मेरा मन बहुत भटकता है, तो जब मेरा है तो उसको अपने प्यार से अधीन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उससे बातें की जा सकती हैं। तो जब भी बैठते हो तो जब देखो मन की गति बहुत फास्ट है, जब भटक रहा है इधर उधर, तो उसको पहले तो देखो कहाँ जाता है, किधर जाता है, कौन सी आकर्षण मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, किधर जा रहा है, देखो तो पहले। कहीं तो अपने को आप देखते ही नहीं है, और देखते नहीं है तो उसमें उलझते रहते हैं, कहते हम क्या करें, आते ही संकल्प। लेकिन बहुत एकांत में बैठ करके, अपने आसन पर बैठ करके संकल्प की गति पर ध्यान दो, बिजनेस में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है, कोई बहुत चीजें छिपी हुई हैं, रखी हुई हैं, बैठेंगे तो जहां जहां भी कोई लगाव होगा, जहां जहां बुद्धि का आकर्षण होगा उधर ही जाएगी। तो मन और बुद्धि को अगर आपने बहुत साक्षी दृष्टा बन करके देख लिया तो देखते देखते वो कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर उससे बात करो, जैसे हमारे बाबा ने कैसे बात किया, ब्रह्मा बाबा जो इंद्रिय जीत बने, कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त की, उसके लिए उन्होंने शुरू से ही शिव बाबा के आने से ही मेहनत शुरू कर दी। 1932 में ब्रह्मा बाबा ने एक अपने हाथों से डायरी लिखी और जिस डायरी में उन्होंने बहुत प्यार से मन बुद्धि संस्कार आंख नाक मुख कान इन सब इंद्रियों को सामने इमर्ज किया। बाबा का बिजनेस था राजाओं के साथ, तो राजाओं के दरबार लगते थे, तो बाबा कई बार दरबार में पहुंच जाते, देखते थे ये राजाएं दरबार कैसे लगाते हैं। तो राजा एक आसन पर अलग बैठा है और सारे उसके मंत्रीगण हर स्टेट के अलग अलग कारोबारी ऐसे सामने गद्दी पर बैठे हैं और राजा उनसे पूछता है तुम्हारी रैयत तुम्हारी प्रजा तुम्हारा एरिया ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब दरबार बाबा देखता था तो कहता था ये दरबार तो हमें लगानी चाहिए, राजा तो हम हैं। भविष्य राज्य के पहले तो संगम पर राजा बच्चों को बाबा ने बनाया है, राजा बच्चे कहता है तो हम अपनी दरबार लगाएं, मन से बातें करें कहाँ जाता है किस लिए जाता है क्या चाहिए। और साकार में बाबा की मुरलियां सुनी है कि बाबा कभी कभी जब भक्ति करता था मन बहुत भटकता था तो अपने को थप्पड़ मारता था या अपने को ऐसे काट लेता था। वास्तव में ये कोई स्थूल अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत स्नेह से प्यार से उसको समझाते हैं बात करते हैं कि सही मंजिल कौन सी है किधर हमें चलना है किधर ले जाओ, ये अंतर मन वाहन वाहन है ना आत्मा का, तो इस वाहन पर हमें कंट्रोल करना, उसकी लगाम चाहिए। कहते घोड़ा है भटकता है तो घोड़े की लगाम भी तो है ना, अगर बिना लगाम के बैठ गए तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं गिरा देगा नुकसान हो जाएगा। इसलिए श्रीमत की लगाम बाबा ने दी है। अगर श्रीमत के विपरीत कोई संकल्प मन कर रहा है वहां जा रहा है तो उसको बहुत ही प्यार से मोड़ना है, अपने लक्ष्य की ओर ले जाना है कि जब मैं बाबा आपका बच्चा बन गया और जब मुझे इतना ऊंचा लक्ष्य मिला है कि इस संगम युग पर तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना है, अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर वो लक्षण आ जाए फरिश्ता बनने के लिए मुझे क्या करना है, इस फर्श से रिश्ता अगर है तो फरिश्ता नहीं बन सकते। अब फर्श को हमने धारण किया है, शरीर फर्श है ना आत्मा का, ये फर्श नहीं इस पर तो हम ही, इस फर्श पर अगर हमारे पांव नहीं है, देह है संबंध है संस्कार दैहिक आकर्षण अगर आत्मा को आकर्षित कर रही है माना उसका फर्श से रिश्ता टूटा नहीं है। हम सबको इस फर्श से अपने रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा, धारण करो लो मना नहीं है, कर्म क्षेत्र पर है कर्म करना है, लेकिन आधार के रीति से लिया कर्म किया कर्म पूरा हो गया उस लाइट के शरीर में चलेगा। अब ये अभ्यास चाहिए योगी बनने के लिए, कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए सबसे पहले मन जीत इन संकल्पों की शक्ति पर जीत चाहिए और तभी होगी जब अभ्यास करोगे कि मैं इस शरीर से अलग हूं। जो बार बार बाबा मुरलियों में कहते आज भी कहे बच्चे शरीर से डिटैच हो जाओ अशरीरी हो जाओ शरीर का आधार लो अलग हो जाओ, अब ये अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत समय इसके साथ रहे हैं ना, 63 जन्म देह अभिमान में आत्मा रही है, सतयुग त्रेता में तो आत्माभिमानी नेचुरल थी क्योंकि संगम की प्रारब्ध भोग रही थी, लेकिन द्वापर शुरू होते ही इस देहभान ने इस अभिमान ने अपना शासन किया और आत्मा धीरे धीरे मर्ज होती गई, मैं कौन हूं यही भूल गया, और इसको भूलने के कारण फिर कर्म इंद्रियां हावी हो गई और पाप होने लगे विकर्म होने लगे और एक के बाद एक कर्म करते करते वो कड़े संस्कार बन गए और ऐसे संस्कार बनते गए जो कलयुग के अंत तक आते आते आत्मा बिल्कुल तमोगुणी तमो प्रधान बन गई। अब उसको बाबा सत्व प्रधान बनाना चाहता है, जो एकदम गिर गया उसको उठाना चाहता है, तो हम सबको बहुत इस पर अटेंशन देना है। यही मेहनत है और कोई मेहनत नहीं है। लेकिन एक नेचुरल आदत बन जाए कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, मन बुद्धि मेरे हैं और इन मन बुद्धि के द्वारा मुझे यात्रा करनी है। ये यात्रा एक स्थान पर बैठ करके नहीं करनी है, चलते फिरते खाते पीते कर्म करते जब ये याद निरंतर हो जाएगी तब कहेंगे इसकी लगन लग गई, इसको तो एक के सिवाय कोई सोचता ही नहीं है। वो याद ज्वाला रूप बनेगी, बैठ गए और ज्वाला रूप बन गई, वो तो थोड़े समय के लिए है, एकाग्र हो गए एक के लगन में मगन हो गए। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे निरंतर हर कर्म में मेरी याद में खोए हुए रहें। अब निरंतर याद के लिए क्या करना होगा, एक जैसी याद तो निरंतर नहीं रह सकती। अब कोई कहे मैं बीज रूप बन करके निरंतर रहूं तो कर्म ही नहीं होगा, फरिश्ता बन करके रहूं तो भी नहीं चल सकता है काम। निरंतर के लिए उसको वैरायटी करना पड़ेगा और वैरायटी विधि पूर्वक करना, ऐसे नहीं अभी ये कर रहे हैं अभी ये कर रहे हैं। बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर सर्किल दिया है जिस सर्किल से बाहर नहीं निकलना है, ब्राह्मणों को उस सर्किल के अंदर रहना है। उस श्रीमत का सर्किल क्या है, पहला है बाबा के महावाक्य जो हम सुनते हैं उस पर अच्छा चिंतन किया जाए, क्योंकि बाबा की मुरली हमने सुन ली, वरदान सुन लिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छा हम कहते हैं, लेकिन वो हमारे स्वरूप में आ जाए तो उस ज्ञान का अच्छा चिंतन करना। ज्ञान सागर ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, स्वयं की पहचान दी है, घर की पहचान दी है, कर्मों की पहचान दी है, और फिर रोज नए नए ढंग से बाबा हमको बच्चे बच्चे कह करके अशरीरी बना रहा है, न्यारा बना रहा है। तो बाबा की मुरली की कुछ बातें दो चार वरदान से स्लोगन से सार से जो अच्छी बात लगी आप नोट कर लो अपने पास और उस पर मनन करो चिंतन करो, तो व्यर्थ चिंतन स्टॉप हो जाएगा। जब व्यर्थ खत्म हो जाएगा अच्छा अच्छा चिंतन चलने लगेगा तो भी एक याद की सब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बाबा की बातें याद कर रहे हैं, कोई इंसान की तो कर नहीं रहे। कोई सामने आता है भाई बाबा की एक मीठी मीठी मुरली की बात सुना दी, आज बाबा ने ये कहा आज बाबा ने कहा। कभी कोई बात पर विशेष ध्यान देता है, कभी कोई बात पर बहुत अटेंशन खिंचवाता, बाबा नए नए ढंग से रोज अपने को कुछ न कुछ नवीनता देता है। तो उस पर अगर हमारा मनन चिंतन है उसको हम अच्छी तरह से चिंतन में लाए तो व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाता, और व्यर्थ खत्म हो जाता है तो समर्थ संकल्प अच्छे अच्छे संकल्प चलने लगते। फिर समय आता है तो बहुत प्यार से बाबा से रू ध्यान करो, बातें करो, बाबा आपने कैसे कहाँ पड़े थे कैसे निकाला है। कई बार आपने साकार बाबा की मुरलियों में बाबा अपने आप से कैसे बातें करता है मुरली में सुनाता है, बाबा को कहता हूँ बाबा मैंने आपको ये रथ दिया है, आपने इसको लोन पर लिया है, इसको आप खिलाओ इसको आप नहलाओ ये आपका है। तो बहुत प्यार से बाबा बातें करता है। कभी कभी कहता है भाई मासी का घर नहीं निरंतर याद करना, याद ठहरती नहीं है, बहुत खिसकने वाली चीज है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो बच्चों के सामने बच्चों को कभी निराशा न हो जाए दृष्टिकस्त न बन जाए इसलिए समझाता है। भाई ब्रह्मा बाबा कहीं बाबा से अलग हो सकता था क्या, उसके साथ तो जुड़वा था वो। तो बाबा अपनी स्टेज को बहुत ऊंचा बना करके बच्चों के दिल को लेने के लिए, हाँ बच्चे हो सकता है बुद्धि भटकती है, भोजन करता हूँ पहले की दादी में याद करता हूँ, खाया थोड़ी देर में भूल गया। अब ये बच्चों की स्थिति है बाबा की नहीं है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं सोचो कैसे होगा ये तो बड़ी बात है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो नेचुरल हो जाता है। खा रहे हैं कौन खिला रहा है, किसके खा रहे हैं, कैसे बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, कहाँ से निकाला है, बहुत चिंताएं दुनिया में, कितना दुख है कितना भय है कितनी चिंता है, बाबा आपने मुझे भय मुक्त बना दिया, मरने का भी भय नहीं है, मरे हुए ही है। धन है धन का भी भय नहीं क्योंकि सब कुछ इंश्योर्ड कर दिया है, सफल कर लिया है, न किया हो तो करके जाना, कईयों को बहुत भय लगता है, पता नहीं कुछ हो ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, कोई ऐसा ना कर दे, उसका भी भय बना हुआ है। भूत का भी बड़ा भय है, पता नहीं कोई आत्मा आ जाए, अरे आत्मा क्या है। इसलिए भयभीत नहीं होना कभी, निर्भय बनो। बाबा हमें अजर अमर अविनाशी का टाइटल देता है। तो इसलिए भय चिंता, लोगों कितनी चिंता, ये महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह है कि वो जानते हैं तो सब कुछ अति में जाएगा, इस अति के बाद इसका अंत हो जाएगा। जब हमारा भविष्य हमारे सामने उज्जवल है, हमने वर्तमान में अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, कर रहे हैं, तो कल क्या होगा ये पूछने की जरूरत नहीं, सब अच्छा होगा, चिंता किस चीज की। वैसे भी कहते हैं चिंता चिता समान है, इसलिए चिंता किस चीज की करनी है। बाबा कई बार कहते बच्चे बीती तो बीत गई, इतिहास हो गया, वो तो भूत हो गया, भूतकाल, और आने वाला रहस्य है उसको हम जानते भी नहीं, लेकिन कम से कम वर्तमान में जीना तो सीखो, आज अच्छा करो, संकल्प अच्छे हैं, बोल अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, सुखदाई है, तो उसका परिणाम गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा के ऊपर सब सौंप दो जवाबदारी, बाबा आपने सब ले लिया मेरी, चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाबा कोई चिंता थी? आप समझो, आप विचार करके देखना, जिस बाप को दो बच्चे भी हों और घर में कोई चीज खाने के लिए ना हो, कोई कमाने वाला ना हो, तो उसको चिंता नहीं होगी क्या? कितना फिक्र हो जाएगा, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। और बाबा कर्ज को भी कहता है मर जाए, कर्ज भी नहीं लेना किसी से, उधार भी नहीं मांगना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मांगने से मरना भला। अब ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सुना रहा और फिर कहता देखो 400-350 बच्चे हैं, पेपर आया, बीमारियां आई, न कपड़े हैं, न दवाई है, न पैसा है, न कोई चीज है। एक साल का ही वो पेपर लिया, लेकिन उस पेपर में जितने कच्चे थे सब भाग गए, पक्के थे, निश्चय बुद्धि थे, कुछ भी हो जाए बाबा जिधर रखे, जैसे रखे, जिस हालत में रखे, मैं तो मरेंगे जिएंगे तेरे दर पर रहेंगे। वो पक्के बच्चों ने आज कहां से कहां यज्ञ को पहुंचा दिया, वो थोड़े थे वो, लेकिन निश्चय की विजय थी। ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह था, चिंता मुक्त बेफिक्र, क्योंकि उसको क्या निश्चय था, इस भगवान के बच्चे मेरे थोड़ी हैं, उसको समर्पित हुए हैं, वो एक दिन भी इनको भूखा कैसे रखेगा, इतना निश्चय बुद्धि थे, इसलिए निश्चिंत स्थिति थी। योग के लिए निश्चिंत स्थिति बहुत आवश्यक है, अगर जरा भी चिंता होगी योग लगेगा ही नहीं, भटकती रही बुद्धि, ये करना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बैठो आप आधा घंटा एक घंटा, टाइम पास हो गया, योग नहीं लगेगा, वो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें करो, रूह ध्यान करो, बाबा आपने तो दुख धाम से मुझे निकाल लिया, कहां मैं दुख के सागर में, दुख के कीचड़ में पड़ा हुआ था, पल पल में दुख, आज बच्चा बीमार हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, कितनी सारी समस्याएं थी, आपने मुझे अपना बच्चा बना करके उस दुख धाम से निकाल करके। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते ना, माली जो होता है ना, जो अच्छे पौधे होते हैं वो अलग पार्ट पर रख लेता है, अलग किनारे करके रखता है, तो हम सब इतने अच्छे थे, हमें कांटों को फूल नहीं बनाया है, लेकिन कांटों में से फूलों को चुना है, जो कांटों की दुनिया थी उसमें जो छिपे हुए फूल थे उन फूलों को अपना बना लिया, तो हम सब कौन है, फूल बच्चे हैं बाबा के। इसलिए कभी भी कोई दुख चिंता भय उसका नाम निशान नहीं है, तो बड़ी निश्चिंत स्थिति है, वाह बाबा वाह, कैसी जीवन दी है, कितना महान बनाया है, शुक्रिया बाबा आपका, वो प्यार भरी याद वो रूह ध्यान कहलाती है। और फिर जब सब जवाबदारी बाबा को अर्पित कर दी, करावन हार करा रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चला रहा है, आप देखो साक्षी होकर के, जो यज्ञ के कर्णधार थे, जिन्होंने यज्ञ को इतना प्यार से चलाया है, सींचा है, मुझे तो वो दिन याद आते थे जब मैं शुरू शुरू में आया था, दीदी और दादी का टर्न बनता था। अगर दादी को कहीं बाहर जाना है तो दीदी नहीं जा सकती बीच में जब तक दादी गेट पर आएगी नहीं। एक दिन भी मधुबन को खाली नहीं छोड़ना है, एक दिन का एक घंटा भी नहीं छोड़ना है। दीदी अगर जा रही है तो दादी पहले गेट पर आएगी, घर में आएगी, फिर छुट्टी देगी आप जाओ। दीदी आ गई है, दादी जाएगी, लेकिन बीच में कोई नहीं जा सकता। समझ रहे मेरी बात? इतना यज्ञ का ध्यान था बाबा के बाद कि मुझे यज्ञ छोड़ना नहीं एक मिनट भी, कुछ भी होगा, कैसी भी बातें आएंगी। दीदी दादी जवाबदारी समझते थे। और आज हम सब देख रहे हैं 3-4 स्थान, इतना बड़ा विस्तार, कहां वो 100 लोग आते थे, उसके लिए चिंता होती थी इनको कहां सुलाएंगे, क्या खिलाएंगे, बरसात में गीली लकड़ियां हैं, पानी गर्म करना पड़ता है एक जगह पर, सबके कमरों में बाल्टियां पहुंचानी पड़ती हैं, सोने के लिए कमरे ही नहीं हैं। हमको दादियां कहती थी तुम या तो अपने कमरे में दरी बिछा के सब एक साथ सो जाओ, अगर साथ नहीं सोना तो तुम लोग बरामदे में आ जाओ, उनको कमरा दे दो पार्टी को। कितने बार हम लोगों ने अपने कमरे छोड़े। एक बार तो पूरे पांडव भवन को ही खाली करा दिया, कोई भी पांडव भवन वाला पांडव भवन में नहीं रहेगा, जाओ हम शांति भवन में रहो जाकर के, यहां सब टीचर्स रहेंगे। एक भाई एक बहन को यहां नहीं रहने दिया, सब उधर जाओ। वो दिन थे, थोड़े लोग थे, लेकिन आज हजारों में आते हैं। हम तो कहते हैं तो क्या बाबा की कमाल है, 10,000, 20,000 अभी भट्टियों में आ रहे हैं, माताओं में 18,000, अभी अधर कुमार और कुमारों में भी 10,000 टोटल थे। ये किसकी लीला चल रही है? इंसान की? ये प्रभु लीला, खुद करण करावनहार बन करके करा रहा, अनुभव करा रहा है, सबको खींच रहा है, और सब भाग भाग करके आ रहे। भाई क्यों आ रहे हो? रहने की व्यवस्था नहीं, मेहनत है, तकलीफ होगी खाने में पीने में, कोई नहीं सुन रहा है, भाग रहे हैं सब। तो अगर इस बाबा की लीला को भी देखें तो एक अंदर से आता है कि कोई व्यक्ति कहे कोई नहीं है, कोई इनको भी ऊपर नहीं दिखाई देता है, बड़ा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो बड़ा ऊपर से हैंडल कर रहा है सब कुछ, बैठा है। और दादियों की सकास, उनकी शुभ भावनाएं, उनकी शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति यज्ञ को आगे बढ़ा रही, उन्नति को प्राप्त हो रही है। तो हम सब बाबा की लीला को भी अगर देखते हैं तो बाबा के प्रति बहुत प्यार जागता है। बाबा आपने अपने यज्ञ को छोड़ा तो नहीं है, अपनी दादियों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा क्या से क्या करा रहे हो? तो जब कोई भी जवाबदारी हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, सब कुछ करण करावनहार बाबा करा रहा है। दादियों ने ऐसे ही अपने को डबल लाइट बना दिया, फरिश्ता बन गई। अब फरिश्ता को ऐसा थोड़ी हमको उड़ना है, लेकिन चलते फिरते कर्म पड़ते बिल्कुल लाइट है, हल्के हैं। ऐसे कोई देखे कहेगा हाँ इतने सब काम कर रहे हैं, इतनी सारी जवाबदारी इनके ऊपर है, लेकिन कितने हल्के हैं। जब भी जाओ बात करते हैं, मुस्कराते हैं, लगता ही नहीं इनके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी होगी। आज हमारी डिपार्टमेंट में आप अगर जाओ देखो, पूरे विश्व की पढ़ाई का सारा कारोबार, सारे पत्र व्यवहार, सब कुछ सब चल रहा है। हम लाइट होकर के हम इधर घूम रहे हैं, उधर सेवा कर रहे हैं, उधर सेवा कर, कराने वाला करा रहा है, अलवेले नहीं है। टाइम आता है, जब समय मिलता है तो कार्य पेंडिंग न रहे उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन कभी चिंता लेकर के बैठे, अरे ये मुरली नहीं गई, ये चीज नहीं गई, ये होमवर्क नहीं गया, अभी तो कोई कहने वाला ही नहीं है, नहीं जाएगा तो अभी ये तो कोई यहां नहीं कहेगा राजू तुमने ये नहीं भेजा। पहले अगर मैं 5 दिन 2 दिन लेट कर देता तो दादी बुलाती, इधर अभी तक तो गया नहीं, अभी तो कोई पूछने वाला ही नहीं, 16 साल दादी को अव्यक्त हुए हो गया। तो ये प्रभु लीला है, कराने वाला करा रहा है। कोई सोचे मैं कर रहा हूं उसका अभिमान है, और वो अभिमान उसको भारी बना देता है, बोझिल कर देता है, बोझ वाला फरिश्ता बन ही नहीं सकता। इसलिए सदा ध्यान देना, अगर हम लाइट हो करके रहते, कराने वाला करा रहा है, हमको निमित्त भाव से निमित्त बन करके करना है बस। निमित्त है तो निर्माणचित है, निर्मल वाणी है, जरा भी अहम भाव नहीं है, सबके साथ मिलनसार है। बहुत सारी विशेषताएं एक निमित्त शब्द से आ जाती, और निमित्त है तो योग लगाने में मेहनत ही नहीं, बोझ ही नहीं है कोई भी पर, बाबा हमारे साथ है, करा रहा है। अब फिर चौथी स्टेज जो है योग की, वो बहुत पावरफुल स्टेज, जिससे कहते हैं विकर्म विनाश हो जाएं, संस्कार परिवर्तन हो जाएं। कई बार वो स्टेज सहज बनती नहीं, मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत दिनचर्या पर ध्यान चाहिए, बहुतों की दुआएं चाहिए, बहुत श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी चाहिए, तब वो एकदम एकाग्रता आती है। नहीं तो कहीं इधर बुद्धि जाती, कहीं इधर जाती है। आधा घंटा योग करेंगे तभी भी कहां कहां घूम के आ जाएंगे। वो योग जो बीज रूप का है, पावरफुल है, जिससे विकर्म सहज विनाश हो जाए, उसमें मेहनत लगती है। इसलिए कईयों के संस्कार चेंज नहीं होते, रूढ़ियान भी करते हैं, मूल्यों का चिंतन भी करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन जैसे के तैसे रह जाते हैं, बदलते ही नहीं, परिवार संस्कार चेंज ही नहीं होते। दूसरी एक विधि है, मान लो वो योग नहीं लग रहा है, तो आपने देखा होगा पूज्य बनने के लिए मूर्ति दो प्रकार से बनती है। एक तो छेनी हथौड़ी लगती है, उसको देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में बड़ी मेहनत लगती है मूर्तिकारों को, कोई अंग कोई भी स्पेस में गलती ना आ जाए, उसको कितनी छेनी हथौड़ी खानी पड़ती है। लेकिन दूसरा एक पूज्य बनने का साधन है बार बार, मैं एक बार मॉरिशियस गया तो मैंने देखा एक जगह पर बहुत सारे गोल गोल पत्थर रखे थे शालिग्राम, तो वो पत्थर कैसे पूजनीय बन रहे थे, वो बार बार पानी के साथ नीचे जाते थे, सागर की लहरों में जोर से लहर आती थी ऊपर आ जाते थे, और जब कई बार नीचे ऊपर आते और जाते थे तो घिस घिस करके वो इतने अच्छे चिकने बन गए, और उनको लोग उठा के ले जाते हैं मंदिरों में रखते हैं, शिवलिंग भी बन जाता है, शालिग्राम भी बन जाते हैं, उनकी भी पूजा होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या करना, अगर मान लो योग नहीं लगता है, संग नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, भले कोई भी टकराव हो जाए, कई मन मुटाव कर लेते हैं, बहन जी ऐसे करती हो, वैसे करते हो, वैसे करते, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे रूठ जाते हैं, और रूठ करके अपनी तकदीर को लकीर लगा देते, पढ़ाई ही छोड़ देते, संग ही छोड़ देते, कुछ भी हो, कैसे भी ठोकर खानी पड़े, कैसी भी बातें हों, कोई इज्जत दे न दे, मान मिले न मिले, हमको तो भगवान से काम है, हम तो बाबा की मुरली सुनने जाएंगे। अब संग में आओगे, अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में बैठोगे, मुरली के कुछ शब्द कानों में जाएंगे, तो धीरे धीरे वो लहरें बाबा की आपको चिकना कर देंगे, पावन बना देंगे, पूज्य बना देंगे। तो ये भी नहीं है बीज रूपी बन जाए तो योग से भी कर्म विनाश हो जाएंगे, खाद निकल जाएगी। लेकिन अगर बाबा के संग में, परिवार के संग में, अच्छे चिंतन में हम रहते हैं तो समय लग सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो भी एक साधन है आत्मा के संस्कारों को, खाद को निकालने का। तो अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में, अच्छा भोजन, अच्छा व्यवहार करते करते धीरे धीरे वो संस्कार चेंज होते हैं। तो हम सभी योग के लिए चार पांच बातों का ध्यान दें। सबसे पहले आंतरिक खुशी चाहिए, बिना खुशी के बैठ जाओ, ऐसे ही सा आकर के बैठ जाओ, फिर ज्ञान से चिंतन करो, मैं एक आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं बीज रूप हूं, मैं निराकार, तो वो खुशी चेहरे पर दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत खुशी है, बहुत स्नेह से, नशे से हम बाबा से बातें करते करते सेंटर तक आते आते, अगर वो नशा चला लेते हैं, हम किसके महावाक्य सुनने जा रहे हैं, कौन पढ़ाने के लिए आता है, कितनी ऊंची पढ़ाई है, कितना ऊंचा लक्ष्य लेकर के हम बाबा के घर में जाते हैं, तो घर से सेंटर आते आते आपको नशा चढ़ेगा, खुशी होगी, और नशे खुशी से आप 10 मिनट भी पहले पहले आके योग में बैठ जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, योग सहज लग जाएगा, फिर बाबा की मुरली सुनेंगे तो उसके महावाक्य के अंदर कानों में जाएंगे। तो योग के लिए आधार है नशा और खुशी। जैसे बाबा कहते हैं ना, जब प्लेन को उड़ाते हैं तो उड़ाने के लिए उसको डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, अगर पेट्रोल में कुछ भी मिक्स होगा तो प्लेन उड़ेगा ही नहीं। अब बुद्धि रूपी प्लेन को उड़ाना है साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन, तो उसको तो बहुत अच्छा पेट्रोल चाहिए, और ये पेट्रोल है अच्छे चिंतन से, बहुत नशा चढ़ाना, खुशी चढ़ाना, बहुत खुश रहना, तो जो खुश मिजाज रहते हैं, खुशी की खुराक खाते हैं, वो सहज योगी बन जाते हैं। दूसरी बात बताई, हल्कापन, बहुत हल्का, सौंप दो जब कुछ। जब बाबा के बन गए तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन गए, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवाबदार हैं, मुखिया हैं, घर के मालिक हैं, अब इस भाव को, भावना को चेंज करो, मैं तो बाबा तेरा बच्चा हूं, ये सब तेरे हैं, रचना तो मैंने रच ली, लेकिन अभी मेरी ये रचना तेरे को मैंने समर्पित कर दी, बुद्धि से समर्पित किया और हल्के हो गए। तो जितना हल्के हैं, जितना खुशी में है, नशे में है, और जितना इस दुनिया से बातों से उपराम है, न्यारे हैं, उपराम, जिन बातों में मेरा कोई लेना देना नहीं, जहां मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उन बातों में हमें नहीं ध्याना है, वो हमारा टाइम, हमारी एनर्जी व्यर्थ जा रही है, नष्ट हो रही है। जितना बातों से व्यर्थ से उपराम रहोगे, जो जरूरी है, जो हमारे कार्य व्यवहार के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, आवश्यक हैं, वो तो संकल्प उठते हैं, उनको कोई मारना नहीं है, लेकिन समय पर उठें और जो कार्य पूरा हो गया वो बीत गई उसको हम चिंतन न करें। बीती को बार बार अगर चिंतन करोगे तो भी योग नहीं लगेगा, इसलिए पृष्ठा बीत गए 5000 साल के लिए, रिपीट रील रिपीट गई, उसका चिंतन नहीं कर। तो वर्तमान में जीने के लिए उपराम स्थिति बहुत मदद करती, साक्षी और उपराम, ये दो शब्द आते हैं, अपने पार्ट को, संबंधियों के पार्ट को, निमित्त आत्माओं के पार्ट को, बहुत साक्षी होकर के देखो, प्रश्नों में नहीं जाओ, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, यहां भी ऐसे होता, वहां भी ऐसे होता, अगर इन बातों में उलझ गए ना तो योग कभी नहीं लगेगा। और कई उलझ जाते हैं आकर के, थोड़ा ज्ञान लेते हैं 5 साल 10 साल, वो समझते हैं हम भी तो कुछ जवाबदार हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है, यहां ऐसे क्यों हो रहा है, ये बहन ऐसे क्यों कर रही है, बाबा ये कहता है ये ऐसे कर रही है, और उसमें उलझ गए तो, इसलिए ध्यान देना हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक के लिए जवाबदारी बाबा की है। कई बार कहता है हमने, बाबा ने सबको परिवर्तन करने का ठेका लिया है, तुम बच्चों को ठेका मैंने नहीं दिया है, कई ठेकेदार खुद बन जाते हैं, मैं बदल के दिखा दूंगी, मैं देखूंगी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों, अरे तुमको किसने जवाबदारी दी, हम अपने को बदलने आए हैं, दूसरे को बदलने नहीं आए हैं, तो मुझे स्वयं को बदलना है और स्वयं को साक्षी दृष्टा बनाना है, देखो शुभ भावना रखो, अच्छा अच्छा चिंतन करो, ठीक हो जाएगा। शुभ भावनाएं जादू मंत्र का काम करती हैं, लेकिन जहां बोल दिया वहां संबंध बिगड़ गए, इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति में देख करके किनारा हम नहीं कर रहे हैं, कोई हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं, हमारी शुभ चिंतक वृत्ति है, शुभ भावनाएं हैं, सब अच्छा हो, बाबा इनको सद्बुद्धि देगा, इन सब ठीक करेंगे, लेकिन वर्णन करके इधर उधर बातों को फैला करके कई बार जिसने गलती की है वो तो छूट जाता है, करने वाला सुधर जाए, रियलाइज कर ले, लेकिन जिसने उस बात को उठा करके वातावरण बना दिया उसके ऊपर वो बोझ चढ़ जाता है, अवज्ञाओं का बोझ और ऐसी चिंतन का बोझ कभी भी योग लगने नहीं देता। इसलिए ध्यान देना, जो जितना इस परिवार में उपराम और साक्षी दृष्टा होकर के रहता है वो सहज योगी बन जाता है, उसका योग बहुत अच्छी तरह से लगता है, और जो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है जाकर के वो फंस जाता है, उसका योग लगता ही नहीं है, चाहे 10 साल 15 साल 20 साल में ज्ञान में है, योग कर रहा है, लेकिन उसके संस्कार चेंज नहीं होते। और चौथी एक बात और ध्यान पर है कि जो आत्माएं सबको आंतरिक सुख देती हैं उन्हें दुआएं मिलती हैं, और दुआएं हमारे योग को बहुत सहज बना देती हैं, बैठ जाओ ऐसे योग, ऐसे आत्मा उड़ जाएगी, सबके स्नेह की, प्यार की, अपनत्व की, ये भाई बहुत अच्छे हैं, ये बहन बहुत अच्छी, समय पर साथ देते हैं, समय पर मदद करते हैं, कितना निर्माण चित्त है, इनको कभी अहंकार नहीं आता, कभी मैंपन नहीं आता, कोई भी छोटा बड़ा काम इनको दे दो सदा हाँ जी करते हैं, ये क्या है, थैंक्स थोड़ी दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, वो दुआएं जिन आत्माओं को मिलती हैं बहुत सहज बाबा की याद में बैठते हैं, योग लग जाता। तो ऐसे योगी जो निरंतर योगी हैं उनकी याद लगन की अग्नि बन जाती है, और उस लगन की अग्नि में रहने से हमारे संस्कारों में शुद्धिकरण आता है, हमारी उत्तेजनाएं शांत हो जाती है, कोई निंदा करता है, कोई महिमा करता है, सब प्रकार के लोग हैं, हर एक के साथ हमारे भी हिसाब किताब हैं। ऐसे नहीं हम संपन्न संपूर्ण बन के आए, या ब्रह्मा बाबा को आते ही संपन्न बन गए, रेस किया, पुरुषार्थ किया, कितने लोगों ने बाबा की ग्लानी की, कितने सीधे सीधे शब्दों में गालियां दी, बाबा कहते बच्चे ये सब निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं, इनको पता ही नहीं है, ये मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कराने वाला इससे करा रहा है। अब अनजान है, अनजान बच्चे पर गुस्सा थोड़ी किया जाता है, उसके ऊपर केस थोड़ी किया जाता है, मानहानि का केस करेंगे क्या, इसने मेरा इज्जत ले ली, मुझे ये कर दी। बाबा ने कभी भी किसी भी बात में ये नहीं कहा इसके ऊपर केस कर दो, इतना उल्टा बोलता है, बच्चे हैं, निर्दोष हैं। आज गालियां दे रहे हैं, समय आएगा गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, ये बाबा के शब्द हैं। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ऐसे बच्चों को मित्र बना लिया, और आज वही दिखाई दे रहा है जो बहुत विरोध करने वाली आत्माएं थी, वो इतनी सहयोगी हैं, कहीं मकान बना के देती हैं, कहीं सेंटर खुलवा के देती हैं, कहीं कुछ करती हैं, सब प्रकार का सहयोग मिला, कितनी महिमा करते हैं। जो कई बार कहते थे ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो आज कहते हैं सनातन धर्म की सही रक्षा तो आप करते हो, जो उनके सिद्धांत है उनके आपके जीवन में है, तो कितना बड़ा परिवर्तन आया। अगर उस समय विरोध किया होता, ब्रह्मा बाबा ने कहा होता नहीं इनके ऊपर केस कर दो, तो कितना दूरी बढ़ जाती, कितना लोग विरोध करना शुरू कर देते। इसलिए बाबा ने निंदा स्तुति मान हानि जय पराजय दुख सुख सब में समान स्थिति बना ली। तो योगी वो है जिसकी स्थिति समान है। अभी चेक कर लेना अपने आप को, कुछ भी हो, कैसी भी बातें आए, सबसे बड़ी बात तो ये आती है अगर किसी से थोड़ी ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, फट से खींचेगा नीचे। तो आज एक हमारे यूपी के विधानसभा अध्यक्ष आए थे, नीचे भाषण कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि अगर मान लो मेरी कोई टांग खींचता है, कहता मेरी टांग खींचता है, तो टांग खींचने वाला ऊपर होगा या नीचे होगा। तो उसने बड़ी अच्छी रमणीकता से कहा कि मैं जानता हूं ये संस्था जब आगे बढ़ रही है, जब इतना सारा नामाचार हो रहा है, तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो टांग खींचते होंगे, लेकिन सदा इस नशे में रहना कि हम तो ऊंचे हैं ऊपर हैं, टांग तो तभी खींची जा सकती तब वो नीचे होगा। ऐसा बहुत प्यार से बहुत अच्छा भाषण किया था। इसलिए कोई बात की परवाह नहीं करना, बेफिक्र बात, बेफिक्र वास्ता एकदम ऐसी स्थिति में रहो जो योग लगाना न पड़े, योग लगा हुआ ही है, योगी जीवन है, योग एक दो घंटे का थोड़ी, जीवन जिसकी योगी है उसको कैसे कहेंगे हमने दो घंटा योग किया, चार घंटा योग किया, छह घंटा योग किया। बाबा कहता है योग नहीं है, अगर चार घंटा तुमने मुझे याद किया बाकी 20 घंटा किसको किया। तो हम सभी बहुत ध्यान से एक ऐसी योगी जीवन में जिए। योगी जीवन की निशानियां पता क्या होती, बाह्य मुक्ता अच्छी भी है लेकिन जितना हो सके अंतर्मुखी सदा सुखी। जहां बाह्य मुक्ता में आना है, जहां बात करनी है, जहां कोई ऐसा माहौल है रमणीक, वहां पर सूखे रहोगे तो मजा नहीं आएगा, सूखापन वहां अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर जगह आप वही बातें करने लगो तो बेकार लगता है, कहते कैसे लोग हैं, समझते नहीं वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है। तो माहौल के अनुसार अपने को ढालना, अंतर्मुखता एक बहुत बड़ी स्थिति है हमारी, ऊंची स्थिति, अंदर अपने आप से बातें करना, अपने आप को देखना, अपने स्वरूप में स्थित रहना। तो जितना अंतर्मुखी बनते जाएंगे उतनी रूहानियत आती जाएगी। रूहानियत एक बहुत बड़ा शब्द है कि जैसे नियत ही ऐसी है, जैसे रूह को देखता है, रूह से बात करता है, तो जितनी रूहानियत है, जितनी अंतर्मुखता है, और चेहरे पर रोब खत्म हो जाए, रुहाब आ जाए, जिनमें रूहानियत होती है उनके चेहरे से रोब नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहते अहंकार तो छोड़ दिया, लेकिन रोब नहीं छोड़ पाता है, चलना, बात करना, बोलना, बैठना, ड्रेस पहनना, ऐसे लगता है पता नहीं क्या इसको मिल गया, अहंकार में चलता है। नम्रता, रोब हमारे जीवन में दिखाई न दे। कभी भी दादियों के चेहरे पर रोब दिखा? इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतना बड़ा सब यज्ञ, इतने सब बच्चों की पालना कर रहे हैं, लेकिन कभी वाणी में, चलने में, बोलने में, उनके आभा मंडल में रोब का नाम निशान नहीं था। सरलता, मधुरता, रमणीकता, नम्रता, सब गुण जैसे उस आत्मा में झलकते थे। वो रुहाब की निशानी थी, चेहरे पर वो रुहाब था, रूहानियत थी। तो जितनी रूहानियत आती है, जितना रुहाब बढ़ता जाता है, जितना अंतर्मुखी रहते हैं, आत्मिक स्थिति बन जाती है, उतना योगी जीवन बन जाते। और योगी जीवन है तो जो देहमान वाले संस्कार हैं, कभी काम विकार सता रहा है, कभी क्रोध अपना उछल खाता है, अपने आप शीतल हो जाएंगे, सब छूटते जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं कभी कभी कहता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कब गुस्सा किया था मैंने, कभी गुस्सा किया था कभी मुख से मैंने इतने वर्षों में अपशब्द किसी के लिए बोले? रिकॉर्ड में ही नहीं है, रिकॉर्ड में ही नहीं। कोई कहेगा राजू भाई ने आज अपशब्द बोल दिया, आज बहुत जोर से आकर के बोल दिया। नीचे ऊपर तो होता है, संगठन है, कारोबार है, तीनों जगह डिपार्टमेंट चलती है, साथी हैं, सात आठ काम करने वाले डिपार्टमेंट के अंदर ही है। कोई नहीं करता है, कोई नुकसान कर देता है, कोई कैसा कर देता है, कोई भाग समय पर नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ी गुस्सा करके, तूने कहाँ गया था, क्यों गया था, किधर गया था, तू मैं भी आज तक नहीं हुई। हर आत्मा का पार्ट है, हर आत्मा की विशेषता है। देखो विशेषताएं, कमियां भी सब में है, विशेषताएं भी सब में है। अगर हमें सही दिशा से अपने कार्य को निर्विघ्न रखना है, अपने घर को एक बहुत आदर्श बनाना है, सुखमय बनाना है, तो जितने सदस्य हैं संगठन में हरेक की विशेषता पर ध्यान दो। विशेषताएं हैं, और विशेषता देख करके जो विशेषता जिसके वही सेवा उसको दो। ऐसे नहीं ये मैं चाहता हूं इसको यही करना चाहिए, अरे उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास वो विशेषता नहीं, वो कला ही नहीं है। आप उसे जबरदस्ती कराओगे तो नुकसान करेगा, थोड़े दिन करेगा फिर छोड़ देगा। अब उसकी योग्यता क्या है, उसी योग्यता के अनुसार अगर आपने उसको सेवा दी है, कार्य दिया है, बहुत अच्छी तरह हंसते खेलते करेगा, बहुत निपुण होगा, बहुत अच्छा कर देगा। तो हम सब ध्यान दें, कभी भी टकराव की स्थिति न बने। दो चीजें जो हैं योग में बहुत रुकावट डालती हैं, एक कहीं से वैर विरोध कर लो, और कहीं पर विशेष आकर्षित हो जाओ, लगाव झुकाव हो जाए, चाहे वस्तु में चाहे व्यक्ति में। बैठो योग में, फट से वो खींच ले, और जहां से आपने तूतू में किया होगा, टकराव किया होगा, वहां ही बुद्धि जाएगी, इसके साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा मेरे से किया। तो हम सभी एक बात को ध्यान दें, न काहू से विशेष दोस्ती, न काहू से वैर, बस अपने सम्मान में रहो, सबको सम्मान देते चलो। बहुत ऊंची स्थिति है योग की, और ये योग की स्थिति संस्कारों को बड़ा दिव्य सरल बना देती। क्या हमारी आसक्तियां रखनी है, कौन सा लोभ लालच है, दो रोटी भगवान खिलाएगा और प्यार से रखेगा, क्यों हम आसक्ति बस पैसा 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 भाग रहे हैं उसके पीछे? क्या करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे, किसके लिए करेंगे, कौन सी पीढ़ियां आएंगी खाने वाली, कभी विचार ही नहीं करते। कहते जिंदगी दो दिन की और सामान 100 साल का, क्या करोगे, किसके लिए कर। एक दिन किसी ने कहा कि बाबा अगर मेरी लाटरी लग जाए ना, मैं यज्ञ में सहयोग बन, तेरा बच्चा, तेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे। कुछ दिन पहले आया था ना मुरली में, अब लाटरी वाला पैसा बाबा लेगा क्या? अरे सच्ची कमाई है तो सफल करो, बाकी इधर उधर की कमाई करके, हेरा फेरी करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ चोरी करके, अब यज्ञ में दिया तो भी तोड़फोड़ में ही चला जाएगा, सफल नहीं होगा, उसका भाग्य नहीं बनता। इसलिए सब ध्यान देना, कर्मों की गहन गति है, और कर्मों पर अगर हमारा फुल ध्यान है तो योग बहुत अच्छा है, बहुत सहज है। योग लगाने की मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत उनको लगती है जिनकी मोहब्बत बाबा के साथ कम है, मोहब्बत है, प्यार है, तो मेहनत का नामो निशाने नहीं है। तो एक बाबा की मोहब्बत में खो जाओ, समा जाओ, सहज योगी बन जाएंगे। और सहज योगी निरंतर योगी हैं, ये लगन की अग्नि है। संस्कार शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। संस्कार कभी गलते मरते जलते नहीं है, संस्कार संस्कार ही रहते हैं, लेकिन उसमें जो मिक्स हो गए हैं वो मिक्स निकल जाता है। अब जैसे सोने को, सोना सोना ही है, लेकिन धीरे धीरे मिलावट करते 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 24 कैरेट वाला 9 कैरेट हो गया जाकर के, उसकी वैल्यू डाउन हो गई। लेकिन अगर सोनार के पास जाता है तो उसको बहुत तेज आग के अंदर भट्टी बना करके उसमें डाल देता है। सोने का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, लेकिन जितना उसके अंदर मिक्स हुआ है वो निकल जाता है पानी डल्ली बना करके, हल्का हल्का सोना। और रियल सोने की निशानी, रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है, तभी जेवर बनता है। अगर मिक्स है तो टाइट है, टूट जाएगा। तो अपने रियल स्वरूप को देख लो, मोल्ड होते हैं या नहीं होते हैं। अगर सचमुच रियल हैं, हमारे संस्कार शुद्ध हुए हैं, तो हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेंगे, हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर देंगे। ऐसा यहां क्यों, ऐसा यहां क्यों, ऐसा यहां क्यों, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में, हर बात में अपने को एडजस्ट करना जानते हैं, मोल्ड करना जानते हैं, प्रश्नों में नहीं उलझते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, तो हम सही सही दिशा में हम योगी हैं। और योगी जीवन से हमारे संस्कारों में शुद्धि आती जा रही है, अशुद्धि निकल रही है। अशुद्धि निकल जाएगी तो जितनी अपवित्रता है, जितनी खाद पड़ गई विकारों की देहिमान के कारण, वो समाप्त हो जाएगी। तो देही अभिमानी बनने का अच्छा पुरुषार्थ करो। तो अभी हम सब चले देही अभिमानी बन के बैठते हैं 20 मिनट के लिए, सब 7:30 तक सब अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके अपने हीरे को देखना। एक बात सुना देता हूं, सुनी होगी, क्लासेस सुनते होंगे। तो दादी जी ने अंतिम समय में एक बहुत पहल गहरा पुरुषार्थ किया। एक दिन ऐसे एकांत में बैठी थी, मैं पहुंचा, सोफे पर बैठी थी, मैं बाजू में बैठ गया। बहुत देर तक मैं दादी को ऐसे देखता रहा, बहुत खोई हुई थी अंदर अंदर, आंख नहीं खोल रही थी। आगे थोड़ी देर के बाद मैंने हिलाया, मैंने दादी बहुत प्यार से आंख खोली, बोलो बोलो कुछ कहना है। अब मैं जब कहना था वो तो भूल गया मैं। मैंने दादी आप क्या कर रही थी, इतनी देर से मैं आपके बाजू में बैठा हूं, आप हलचल में नहीं आई, आपने देखा भी नहीं, क्या कर रही थी। तो बहुत प्यार से बताऊं, पहले कहते बताऊ, हाँ दादी बताओ। मैं अपने हीरे को ऐसे, मैं अपने हीरे को अपनी हथेली पर लिया और बहुत देर से मैं इसको देख रही थी, इसमें कोई दाग है। जब चारों तरफ से देख रही थी कोई दाग नहीं दिखाई थी, अब बाबा सामने आए, खड़े हो गए, कहती बच्ची क्या देख रही है, इस हीरे में कोई दाग नहीं है, ये बेदाग हीरा है। हम सभी भी खाद के दाग है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, आवेश की, आलस की, बहुत सारे दाग हैं। हम अपने हीरे को देखें तो कम से कम साक्षी होकर के। तो अभी हम चलते हैं अपने हीरे को देखेंगे। सभी ऐसे अपने हथेली पर, ये हथेली उठाना नहीं ऐसे, लेकिन अपने बुद्धि की हथेली पर ऐसे देखो, मैं हीरा एक चमकता हुआ सितारा, इस हीरे में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कोई भी विकार की, कोई भी चीजों की, आसक्तियों की अंश मात्र भी रहा हुआ तो नहीं, अगर है तो बाबा को अर्पित करना, बाबा ये ले लो, मैं आपके समान सच्चा प्योर डायमंड बन करके आपके पास आ जाऊं। तो सभी 10 मिनट अपने हीरे पर नजर डालना, अपने आप को देखना, फिर मैं दूसरा लक्ष्य दूंगा, ठीक है। चलो अभी अपने हीरे को देखो। भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक लाइट चैतन्य चमकता हुआ डायमंड हूं। मेरे दिव्य नेत्र के सामने आत्मा रूपी हीरा चमक रहा है। मैं अपने ज्ञान नेत्र से इस हीरे को देख रहा हूं। निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की दिव्य किरणें, पवित्र किरणें इस हीरे पर डायरेक्ट आ रही। हीरे की कोई भी मिलावट समाप्त हो रही है। ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें लेजर किरणों के रूप में स्वयं पर एकाग्र कर लो। वो दिव्य किरणी आत्मा रूपी हीरे से सर्व प्रकार की विकृतियों रूपी खाद को भस्म कर रही। मैं एक पवित्र संपूर्ण शुद्ध चमकता हुआ हीरा अपने सातों गुणों की दिव्य किरणी इस वायुमंडल में फैलता हुआ अनुभव करो। पवित्रता की दिव्य किरणें इस जग की अपवित्रता को समाप्त कर रही। मानव आत्माएं ये प्रकृति के पांचों तत्व इन किरणों से पावन बन रहे हैं। लक्षपति बाबा के साथ इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को सर्च लाइट देनी है। मैं पूर्वज आत्मा हूं, ये पूरी वंशावली इस वृक्ष से निकली हुई सभी डालियां हर पत्ते को मुझ पूर्वज द्वारा सकास मिल रही है। अपने तपस्वी स्वरूप में बैठकर कामधेनु मां, कपल मुनि बाप, उनके बीच में बैठकर मैं पूरे वृक्ष को शक्तियों की सकास दे रहा हूं। सर्वात्माओं तक ये सर्च लाइट जा रही है। हर आत्मा की चाहना मुक्ति पूरी करने की, मुक्ति की चाहना रखने वाली आत्माओं को यह सकास पहुंच रही है। सब दुखों से मुक्त होने का समय आ गया है। सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपने पूर्वजपन के समान में बैठकर सर्वशक्तियों की सकास दो।
ठीक रहा शाम का योग? पावरफुल? किस किस ने पावरफुल योग किया, हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। और क्लास का लाभ किस किस ने लिया? सबको पसंद आया? समाधान हुए जो मन में प्रश्न उठते योग को लेकर? तो भ्राता जी खास अमूल्य समय निकाल कर आए आपके लिए, एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।